Awakening to a new way of living.
ओम शांति। इस सुंदर सुनहरी शाम में आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। ब्रह्मा कुमारीज के धार्मिक प्रभाग द्वारा आयोजित इस ई कॉन्फ्रेंस के ओपन सेशन वन में आप सबका हृदय से स्वागत है, स्वागत है, जिसका विषय है वर्तमान प्रशुद्ध वातावरण बदलने में हमारी जिम्मेदारी। अति हर्ष की बात है कि स्वधर्म में स्थित धर्म की धारणा देकर अनेकों को सशक्त करने वाले धर्मात्माएं आज इस ई कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी महान परम आदरणीय धर्म नेताओं का तथा इस ई कॉन्फ्रेंस में जुड़ रहे सभी भाई बहनों का, प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत शुभ स्वागत है, शत स्वागत है। आज के विषय में अपना अनुभवी युक्त वक्तव्य रखने हमारे साथ जुड़ रही हैं भरतपुर से बी के कविता बहन। आप ब्रह्मा कुमारीज के आगरा सब जोन के संयुक्त जोन प्रभारी हैं। आप 37 वर्षों से समर्पित रूप से ईश्वरीय सेवाएं दे रही हैं। जहां एक ओर आप जन साधारण की सेवा करने में तत्पर हैं, वहीं आप आध्यात्मिक शिक्षा को राज परिवारों तक भी लेकर जाती हैं। आपको विभिन्न क्षेत्रों में की गई आध्यात्मिक सेवाओं के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की ओर से सम्मानित किया गया है। आपसे अनुरोध है वर्तमान प्रशुद्ध वातावरण बदलने में हमारे जिम्मेदारी से हमें वाकिफ कराएं।
ओम शांति। विश्व की सर्व आत्माओं प्रति इस धार्मिक प्रभाग की ई कॉन्फ्रेंस द्वारा विश्व पिता का शुभ संदेश देते हुए परम हर्ष हो रहा है। जहां एक ओर इस विश्वव्यापी महामारी से आज का मानव दुखी, अशांत, संतप्त और भय अवसाद की स्थिति की कालिमा में घिरा हुआ है, वहीं ये कहावत याद आ रही है कि है तेरी रोशनी में वो दम, तू अमावस को कर दे पूनम। इसीलिए मैं आप विश्व की सर्व आत्माओं से निवेदन करना चाहती हूं कि आज वो परम शक्ति, सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा, सर्वधर्म मान्य, सर्वोपरि जगत नियंता, परम ज्योति सृष्टि पर आकर हमें आंतरिक जगत की आत्मिक ऊर्जा के द्वारा परमात्म शक्ति का अनुभव करा रही है और उस ऊर्जा शक्ति के द्वारा हम अपने आंतरिक प्रकृति और बाह्य प्रकृति का जो संतुलन हम मानव मात्र से बिगड़ा, उस संतुलन को पुनः हम व्यवस्थित कर सकते हैं। आइए आज हम धार्मिक रहनुमाओं से आपस में विचार विमर्श करते हैं कि ऐसे दुख के समय पर हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी कैसे निभाएं। मेरा निवेदन है कि हम अंतर जगत की प्रकृति को सुव्यवस्थित करने के लिए आध्यात्म के मार्ग को, अंतर जगत के मार्ग की सुदिशा को अपनाएं और अंतर जगत की आध्यात्म का मार्ग शुरू होता है उस परम सत्ता के मार्गदर्शन से और उसका गंतव्य भी उस परम सत्ता के मार्गदर्शन के साथ ही मानव जीवन में सतो प्रधान स्वरूप धारण कर ही समाप्त होता है। तो आइए जो भूल हमसे विगत 100 वर्षों में हुई, उन भूल के सुधार के लिए हम सभी धर्मों के अनुयायियों से, सभी धर्म के जिम्मेदार पदाधिकारियों से इस मंच से ये निवेदन करना चाहते हैं कि सभी धर्म ग्रंथों में मानव मन की अंतर जगत की यात्रा को आध्यात्म की ओर ले जाने के लिए बहुत सारे सकारात्मक सुविचार सुचिंतन दिए गए हैं। हम सभी आध्यात्मिक और धार्मिक जगत के प्रणेता अपने अपने क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को और सर्व विश्व की आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक भाव रख हद की संकीर्णताओं को छोड़ सर्वे भवन्तु सुखिने की भावना को जीवन में लाकर हम विश्व कल्याण की सेवा में जुट जाएं, एक मत हो जाएं और जो हमारा ध्यान इस धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों का कहीं भौतिकता में कहीं सामाजिकता में कहीं सांसारिकता में अटका हुआ था उस ओर से पूर्णतः विड्रॉल कर ले, क्योंकि वर्तमान समय जगत नियंता इस सृष्टि जगत पर आकर हम आध्यात्मिक धार्मिक लोगों के द्वारा असीम ऊर्जाओं को प्रदान कर रहे हैं और उनके द्वारा इस जगत की विश्व की आत्माओं के मानस पटल को कलुषितता से आध्यात्मिकता में परिवर्तित कर स्वर्णिम युग की ओर ले जा रहे हैं। अच्छा होगा कि इस महामारी की चुनौती को हम अपने जीवन से कुछ ऐसे जोड़ें जो एक अवसर मिल जाए हमें अपनी भूल को सुधार करने का, और वह अवसर होगा कि हम उन्हें अपनी संस्कृति अपने धर्म ग्रंथ अपने ऋषि मुनि अपने आदर्शों की मर्यादाओं का मनन करें, चिंतन करें, अवलोकन करें और आत्मनिरीक्षण करें कि वो हमारे जीवन में कैसे आए और उनको जीवन में लाकर हम भौतिकता और आध्यात्म का समन्वय कैसे करें। मैं आप सर्व को ये विदित कर देना चाहती हूं, आध्यात्म और ईश्वर और अंतर जगत का विकास आत्मोन्नति कोई हमें कर्तव्य से समाज से संसार से विमुख नहीं करते, बल्कि हमारी कर्तव्य परायणता हमारे समाज के आदर्श और कर्तव्य को हमारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने में यह आध्यात्म का पथ ये आंतरिक जगत के विकास का पथ हमारे सुसंस्कारों के निर्माण के द्वारा श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा हमें जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सही दिशा सफलताएं और जीवन की ऊंचाइयों को छूने में मदद करता है। मुझे याद आता है सर्वशास्त्रमय श्रोमणि श्रीमद् भगवत गीता का वह श्लोक जो कहा गया है योगः कर्मेषु कौशलम्। योग कुछ और नहीं बल्कि जब हम शांत मन शुद्ध मन और शक्तिशाली मन से जब उस सत्परम सत्य परमात्मा से अपने मनोयोग को अपने विचारों के योग को अपने बुद्धि के योग को अपने जीवन के कर्म योग को जोड़ते हैं तो हमारे जीवन में कर्मों की कुशलता कर्मों की श्रेष्ठता और कर्मों की दक्षता आ जाती है जो वर्तमान समय में भी उतनी ही आवश्यक है जो सृष्टि के आदि काल में स्वर्णिम युग में होती थी। तो मैं अपने धर्म पिताओं के सभी धर्मों के विशेष पदाधिकारियों से यही निवेदन करना चाहूंगी, हालांकि कठिन है असंभव है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस कठिन को इस असंभव को उस परम ज्योति के मार्गदर्शन को प्राप्त कर उस परम ज्योति की वर्तमान संसार में उपस्थिति को स्वीकार कर जिस प्रकार ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय व्यक्तिगत स्तर से लेकर सामाजिक स्तर पर व्यवसायिक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो सार्वभौम सत्य आध्यात्म और ईश्वर है उसको स्थापित करने में और उसकी प्राप्तियों को अपने जीवन में प्राप्त करके विश्व में अपना 140 देशों में जिस प्रकार सफलता का परचम लहरा रहा है, ठीक उस प्रकार आप सब धर्म प्रणेता अपने पदाधिकारी और अनुयायियों को उस ऊर्जा से जोड़कर, उस शक्ति से जोड़कर अपने मन को, अपने जीवन को और इस कलिकाल की महामारी की चुनौती को उस सत्य के साथ जोड़कर सहजता से पार कर सकते हैं। हर अंधेरे के पीछे एक उजाला होता है। ये महामारी आई है हमें अपने मनस्तल को विकसित करने के लिए। ये महामारी आई है उस सृष्टि के रचयिता की ओर हमारे ध्यान को केंद्रित करने के लिए। ये महामारी आई है अपने पारिवारिक मूल्यों को, अपने व्यवसायिक कार्य प्रणाली के मूल्यों को पुनः हमारे जीवन में लाने के लिए। तो मेरा यही निवेदन रहेगा कि हम अधिक कुछ न करते हुए अपने समस्त इर्द गिर्द के पर्यावरण को, मानव मात्र को, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय, संगठन और प्रांत और देश और समुदाय से जुड़े हुए हैं, उनको यही मार्गदर्शन करें कि हम एक पिता की संतान, चैतन्य शक्ति आत्मा है। जब ये स्वाध्याय, जब ये स्वचिंतन, जब ये स्मृति आती है तो कहा जाता है जैसी स्मृति वैसी दृष्टि और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यदि मैं सबको उस परम सत्य सत्यम शिवम सुंदरम की संतान चैतन्य शक्ति आत्मा मानती हूँ और उन सबको भी चैतन्य शक्ति आत्मा के रूप में देखती हूँ, तो एक सकारात्मक प्रकंपनों की धारा एक दूसरे के प्रति प्रवाहित होती है और वो प्रवाह हमें नकारात्मकता से मुक्त करता है। और जब नकारात्मकता खत्म हो जाती है तो अंतर का जगत और बाह्य प्रकृति दोनों ही तमो प्रधानता से रजो प्रधानता और इसकी प्रतिशत बढ़ते बढ़ते सत्व प्रधानता की ओर अग्रसरित हो जाती है। बंधुओं, मैं यही निवेदन करना पुनः चाहती हूँ कि प्रातः जब हम दिनचर्या शुरू करें तो आज हम जो व्हाट्सएप, फेसबुक, न्यूज़पत्र, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इनको हम प्रातः दिनचर्या से ना जोड़ें, बल्कि प्रातः हम उस प्रभु सत्ता के विभिन्न आयाम, धर्म ग्रंथ, श्रेष्ठ विचार और यदि आप उचित समझें तो ब्रह्मा कुमारी के श्रेष्ठ साहित्य का अध्ययन करें। प्रातः काल के जगते ही 10 मिनट आप श्रेष्ठ चिंतन और प्रभु चिंतन में लगाएं, तो आप पाएंगे कि आपकी दिनचर्या बहुत सुंदर रीति शुरू होगी और वो शुरुआत ही आपको दिन भर के कार्यों के लिए एक आंतरिक मनोबल, एक आंतरिक शक्तियों की जागृति का निर्माण करेगी। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हम हल्के फुल्के व्यायाम को अवश्य अपनी दैनिक दिनचर्या में जोड़ें, अपने परिवार के, अपने इर्द गिर्द के वातावरण को नकारात्मकता से सकारात्मकता, सहयोग दो सहयोग लो की भावना से जोड़ें। कोई मुझे दुख देता है तो मैं उस दुख को ना लूं। हर बात के दो एस्पेक्ट होते हैं, मैं पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एस्पेक्ट का नजरिया रखूं तो हम पाएंगे कि यदि मैं दुख नहीं देता हूं वो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं यदि इस वातावरण की दुखद प्रकंपन आ रहे हैं तो उनको भी हम ना लें। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा हमेशा कहा करते थे, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। साथ ही साथ हम अपने परिवार के सभी सदस्यों को सम्मान दें, अपने कार्य क्षेत्र पर हम सबको सम्मानित दृष्टिकोण रखें, तो हम पाएंगे कि जब रात्रि हम विश्राम करेंगे तो हम फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बल्कि मानसिक आत्मिक सोशल डिस्टेंसिंग होगी। हम इस देह से न्यारे आत्मस्वरूप आत्मवत् सर्वभूतेषु मानते हुए हम मानसिक रीति भी सर्व विषमताओं से परे होंगे और उस परम सत्ता से जुड़े होंगे। साथ ही साथ हम मास्क न लगाएं, मास्क के साथ साथ अंतर जगत का मौन और बाह्य शब्दों के प्रयोग का भी हम ध्यान रखें। आप और हम अनुभवी हैं शब्द कैसे औषधि और बाण बन जाते हैं। तो ये मास्क, महामारी का मास्क हमें प्रेरित कर रहा है कि हम अंतर जगत को श्रेष्ठ बनाकर, जागृत बनाकर, सशक्त बनाकर, मन का मौन, जिव्या के श्रेष्ठ शब्दों का चयन करते हुए मुख का मौन रखें। ये हमें संकेत मिल रहा है। और सोशल डिस्टेंसिंग हमें इनर डिसिप्लिन, आउटर डिसिप्लिन और हमें जगत नियंता से जोड़ने की प्रेरणा दे रहा है। तो आइए उस परम पिता परमात्मा की सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल, अपने को आत्मा समझ, परम पिता परमात्मा को सर्व संबंध सर्व स्नेह से सम्मान हम याद करें और अपने जीवन की इस विषमता को दूर करने का अलौकिक दिव्य मानव जीवन का श्रेष्ठ कार्य करें। ऐसा मेरा इस ई कॉन्फ्रेंस के द्वारा सब धर्म प्रणेताओं से और धार्मिक जनों से और विश्व की सर्व आत्माओं से मेरा निवेदन है। मुझे आशा है कि आप सबको मेरे विचार शुभ चिंतक सद्भावनापूर्ण लगेंगे और यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही जैसे मुझ आत्मा का जीवन एक कमल की भांति, एक पुष्प की भांति विकसित है, मानव जीवन के लक्ष्य की ओर अग्रसरित है, वैसे आप सब भाई बहन भी अपने जीवन को खुशहाल, समृद्ध, सुख शांति से भरपूर बनाएंगे और आए हुए परम प्रिय परमात्मा से अपने मानव जीवन के अटूट संबंध को जोड़कर अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत इस विषमता में समता और सफलता की शुभकामनाएं। ओम शांति।
तहे दिल से धन्यवाद कविता बहन का। अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी कुंती बहन हैं, जो मुंबई मलाड में स्थित राजयोग सेंटर की संचालिका हैं। आप ब्रह्मा कुमारी के ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आप 54 वर्षों से संस्था से जुड़े हुए हैं और 48 वर्षों से समर्पित रूप से ईश्वरीय सेवाएं कर रही हैं। समाज में आपके अनुकरणीय योगदान के लिए आपको प्रतिष्ठित संगठनों द्वारा सम्मानित किया गया है और कई पुरस्कारों तथा अनेक सम्मान से प्रदत्त किया गया है। हमें विश्वास है कि आप अपने वक्तव्य से हम सबको वर्तमान प्रशुभ वातावरण बदलने में जिम्मेदारी का एहसास कराएंगी।
ओम शांति। धार्मिक प्रभाग के ई कॉन्फ्रेंस में महानुभावों रहनुमाओं का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है आत्मनिर्भरता के द्वारा आत्मिक पल। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य है किसी भी वस्तु या किसी भी कार्य को करने के लिए स्वयं पर निर्भर रहना। जैसे एक राष्ट्र की शक्ति आत्मनिर्भरता पर आधारित है। आत्मनिर्भरता के आधार पर समाज में भी मान प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता के आधार पर एक वैज्ञानिक शोध करता है और ऊंचाइयों को छूता है। दूसरे के आधार पर करने से वो ऊंचाइयों को या लक्ष्य को नहीं पहुंच पाता। एक बच्चा आत्मनिर्भरता के आधार पर परीक्षाओं को सफलता को प्राप्त करता है। एक खिलाड़ी जब खेलता है तो वो आत्मनिर्भर होकर के खेलता है तो जीत को प्राप्त करता है। आत्मनिर्भरता माना हमारे अंदर छिपी हुई शक्तियों को सुषुप्त कृति से जागृत करना। अगर हमें किसी का सहारा लेना ही है तो क्यों नहीं हम अपने अंदर की छिपी हुई शक्तियों को जागृत करके हम उनका सहारा लें, तब ही आत्मनिर्भरता के आधार से सफलता का द्वार खुल सकता है। साथ साथ हम देखते हैं कि आत्मनिर्भरता एक गहना है, जो समय के अनुसार चमकता भी रहता है। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए सकारात्मक सोच की आवश्यकता है, आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने आत्मविश्वास की आवश्यकता है। जहाँ हमारा खुद का आत्मविश्वास है वहाँ निश्चित सफलता है ही। विश्वासी व्यक्ति किसी भी कार्य को करता है तो मन में वह अचल, अडल और अडिग रहता है। आत्मिक बल माना आत्मा के अंदर की शक्तियाँ, तो वो आत्मा के अंदर की शक्तियों के आधार से कैसा भी व्यक्ति हो वो हमेशा अपने उन ऊंचाइयों को छू पाता है। लेकिन आत्मिक बल माना आत्मा, तो मैं आत्मा, उसको मुझे पहचानने की आवश्यकता है। क्योंकि शरीर तो हम देखते हैं कि मात्र कर्म करने के लिए एक साधन, एक आधार है, लेकिन मैं स्वयं एक आत्मा हूँ। और वो आत्मा जो प्रकाश पुंज है, जो एक शक्ति है, जो एक ऊर्जा है, जो एक बिंदी स्वरूप है, वह आत्मा जो परमपिता परमात्मा की संतान है। तो जब हम इस प्रकार से संबंध को परमात्मा के साथ जोड़ते हैं तो आत्मा के अंदर उस शक्ति की किरणें आती हैं, और वह शक्ति की किरणें जो आत्मबल का कार्य करती है। और जहां हमारा आत्मबल मजबूत होता है तो वहां पर देखें कि चाहे कोई भी बात, समस्या, परिस्थिति होती है तो हम हमारी रीति से उनको पार कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर देखना चाहेंगे कि एक युवक बहुत दुबला था, पतला था, पैरों से चलने में उसकी ताकत नहीं थी, परंतु उसका आत्मविश्वास मजबूत था। कई डॉक्टरों के कहने पर भी जब उसने डॉक्टरों के द्वारा सुना था कि अब यह पैरों के द्वारा चल नहीं सकेगा, तो अंदर से उसका आत्मविश्वास, उसका आत्मबल जागृत हुआ कि मैं जरूर चल सकूंगा। और जब उसके अंदर ऐसे दृढ़ संकल्प का आवाज आया कि जरूर चल सकूंगा, तब से लेकर के उसने अपने जीवन में एक्सरसाइज, कूदना, चलना ये आरंभ किया। धीरे धीरे करते वो चलना तो क्या, लेकिन ऊंची कूद, लंबी कूद करने लगा। और धीरे धीरे करते वो इतने लंबी और ऊंची कूदों को करते करते भविष्य में उसने 3 स्वर्ण पदक भी प्राप्त किए। कहने का भाव ये है कि जब हमारा आत्मबल जागृत होता है तो हम आत्मनिर्भर रह सकते हैं, हम किसी पर निर्भर नहीं रह सकते। क्योंकि आत्मबल में वो शक्ति है कि आप अपने निर्भरता के आधार से किसी भी कार्यों को करते हुए ऊंचाइयों को छू पाते हैं। एक और भी बात हम यहाँ देखेंगे कि गुरु जी ने शिष्य को कहा कि तुम दूसरे गांव में जाओ, तो शिष्य कहा कि मैं कैसे करूंगा, मुझे तो कोई पहचानता नहीं है। तब गुरु जी ने कहा तुम आत्मनिर्भर बनो। जब तुम आत्मनिर्भर अपने बलबूते पर करोगे, अपने आप पर निर्भर बनोगे, तो हर एक पहचानेगा और आप कार्य कर सकते हो। जैसे हम घरों में भी देखते हैं कि माँ बाप बच्चों को कहते हैं कि बेटा आत्मनिर्भर बनो, अपने बलबूते पर खड़े रहो। कब तक माँ बाप के सहारे पर या भाई के सहारे पर तुम कब तक रहोगे? तो वो बच्चा जब इन बातों को समझने लगता है और वो अपने आप को अपने पर निर्भर करता है, वो है आत्मनिर्भर होना। और वो जब आत्मनिर्भर बनता है तो जैसे वर्तमान समय की परिस्थितियां भी हैं, हम सभी भी अभी आत्मनिर्भर बने हैं, तो उन परिस्थितियों को भी आते हुए भी हम मन से देखें तो विजय को अवश्य प्राप्त करते हैं। आज की बीमारी से भी लड़ भी रहे हैं लोग, लेकिन मन के अंदर एक जीत भी हासिल कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी स्वावलंबी बने हैं, हम सभी आत्मनिर्भर बने हैं। तो आत्मनिर्भर आत्मा के बल से हम सभी बने हैं। जैसे हम देखते हैं कि गंगा नदी की जल धारा जब धीरे धीरे बह रही थी, तो बहते बहते उसके रास्ते में कई अवरोध आए, कई पत्थर आए, उन अवरोधों को पार कर पत्थरों को तोड़ते हुए वह आगे बढ़ती चले। जब वह आगे बढ़ी तो एक विशाल नदी का रूप बन गई, जिसने अनेकों की प्यास को बुझाने का कार्य किया। ऐसे ही मानव जीवन के अंदर भी कई अवरोध आते हैं, कई परिस्थितियां आती हैं, कई समस्याएं आती हैं। वो कौन सी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांच विकारों के द्वारा हम सभी के पास परिस्थितियां निर्माण होती हैं। लेकिन जब हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास मजबूत है तो हम इन विकारों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, हम अपनी कर्म इंद्रियों पर भी जीत प्राप्त कर सकते हैं। तो आवश्यकता है वर्तमान समय हमें अपने इन कर्म इंद्रियों पर या समाज में रहते हुए भी इन विषैले पदार्थों पर या देखें विषय विकारों जैसे मानव जीवन के अंदर भरे हुए हैं उन विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए आत्मबल को जगाना। तो आज इस कॉन्फ्रेंस से आप अपने अंदर उस आत्मबल को बढ़ाएं, आत्मशक्ति को बढ़ाएं और आत्मशक्ति को बढ़ा करके सकारात्मक चिंतन करें। सकारात्मक चिंतन के साथ साथ अपने मन को एक मजबूत बनाने के लिए समर्थ शक्तिशाली विचार को करें। इसमें दो बातें हैं, एक है सकारात्मक चिंतन और दूसरा है श्रेष्ठ शक्तिशाली चिंतन। तो आज हम उन बातों को अपने जीवन के अंदर ला करके सफलता को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे। साथ साथ जैसे हम देखते हैं कि जब हम रास्ते में जाते हैं तो रास्ते में जाते हुए व्यक्ति बारिश से बचने के लिए रेनकोट या छतरी का उपयोग करता है, स्कूटर पर जाने के लिए सेफ सलामत रहे तो हेलमेट का उपयोग करता है, धूल जब उड़ती है तो चश्मा डाल करके अपनी आंखों को बचाता है। इसी प्रकार मानव जीवन के अंदर भी कई प्रकार की समस्याएं रूपी धूल उड़ती है, परिस्थितियों की बारिश आती है, विघ्नों की भी समस्याएं बढ़ती हैं। तो विघ्नों से, परिस्थितियों से, समस्याओं से बचने के लिए उन हमने क्या साधन अपनाया, तो उसका साधन है स्वाध्याय, स्व अभ्यास और स्वलक्ष्य। हम भी जब इन तीनों बातों को अपने जीवन के अंदर लाते हैं तो जरूर एक दिन वह भी आता है कि हम सफलता को प्राप्त करते हैं। तो आत्मा के अंदर इतनी शक्ति है, आत्मबल में वह शक्ति है जो आपके अंदर की बुराइयों को नष्ट करती है और वो बुराइयां नष्ट होकर के हमारे जीवन में अच्छाइयां वो स्वतः आ जाती हैं। दुर्गुण खत्म होकर के सद्गुण अपने स्थान ले लेते हैं, हमें यह निकालने और धारण करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बड़ा आसान तरीका है कि हमारी आत्मा का संबंध उस परमपिता परमात्मा के साथ जोड़े, हम उनके सानिध्य में स्वयं को विराजमान करें, जहाँ परमात्मा की छत्र छाया हो, जहाँ परमात्मा के सानिध्य हो, तो अवश्य ही उस परमात्मा से वो शक्ति की किरणें हमारे अंदर आती जाती हैं और हमारी आत्मा इतनी ही शुद्ध, पवित्र और शक्तिशाली या जिसे कहें बलवान बनती जाती है, जिससे हमारी आत्मा के अंदर साहस, हिम्मत, उत्साह रूपी गुणों का भी आह्वान होता है। तो हम उन गुणों के अंदर जब रहते हैं तो दुर्गुण वो खत्म होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि पानी के नीचे अगर बाल्टी को रख दो तो वो कचरा अपने आप निकल जाता है और धीरे धीरे करते कचरे वाली बाल्टी में भी स्वच्छ पानी हो जाता है। तो आवश्यकता है हमें ऐसे ही अपने मन को स्वच्छ बनाने की। तो जब हमारा मन स्वच्छ बन जाएगा तो मन शक्तिशाली बनेगा, मनोबल हमारा मजबूत होगा, आत्मबल हमारा मजबूत होगा और हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति।
राजयोगिनी कुंती बहन का अंतर्मन से धन्यवाद। अब आज के सत्र में अपने अनुभव का प्रकाश फैलाने हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधापीठ श्री लालजी महाराज मंदिर के परम पूज्य डॉक्टर स्वामी कौशल किशोरदास जी महाराज। आपने भारतीय विद्या भवन मुंबई से न्यायचार्य, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। आपको 8 वर्ष की आयु से ही धर्म के गहरे रहस्यों को जानने में रुचि थी। शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार, पर्यावरण संरक्षण ही आपके जीवन का लक्ष्य है। आपसे अनुरोध है अपने अनुभवी विचार हमारे समक्ष रखें।
ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका आदरणीय दादी हृदय मोहिनी जी, सह मुख्य प्रशासिका आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी, धार्मिक प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका मनोरमा बहन जो प्रयागराज से हैं, एवं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के समस्त साधक और साधिकाएं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से मैं अच्छी तरह से परिचित हूं। आगरा जोन की सह प्रभारी आदरणीय कविता बहन जी के माध्यम से या वो हम और संस्था के बीच में सेतु बनी, उनके माध्यम से इस संस्था में मेरा आना हुआ और यहां आकर के जो हमने देखा कि यह संस्था सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना से सारे विश्व के कल्याण के लिए कार्य कर रही है, ऐसा अक्सर कम ही देखा जाता है। और आज जब सारा विश्व कोविड-19 की घोर समस्या से घिरा हुआ है और ऐसे समय में भी यह संस्था बेचैन है और सारे विश्व के कल्याण के लिए प्रयासरत है और उसके लिए एक सेमिनार आयोजित किया धार्मिक प्रभाग ने, और जिसका मुख्य विषय रखा है वर्तमान प्रक्षुब्ध वातावरण में बदलने में हमारी जिम्मेदारी, बड़ा ही मौलिक विषय है कि वर्तमान में जो वातावरण प्रक्षुब्ध है उसमें हमारी क्या जिम्मेवारी हो सकती है। ऐसे वातावरण को बदलने की जिम्मेवारी ही हमारी है। किस वातावरण को प्रक्षुब्ध ही हमने किया है, सारी प्रकृति को प्रक्षुब्ध ही हमने किया है। क्यों? प्रकृति बड़ी सौम्य है, प्रकृति बड़ी सरल है, प्रकृति का हृदय तो मातृभाव से भरा हुआ है। ये सारी की सारी प्रकृति को हम मानवों ने प्रक्षुब्ध किया है, इसे डिस्टर्ब किया है। प्राकृतिक जितनी भी वस्तुएं हैं सारी की सारी हमारे हित में काम कर रही हैं, और प्रकृति क्या है क्या? देखो हमारे सामने जो जल है ये प्रकृति है, पृथ्वी है प्रकृति है, वायु है प्रकृति है, प्रकाश है प्रकृति है, ये सब हमारी जीवन रेखा है, जीवन लाइन है, जीवन के आधार हैं, और इन सारे किसानों को डिस्टर्ब हमने किया है। हमने जल को प्रदूषित कर दिया है, हमने वायु को प्रदूषित किया है, हमने पृथ्वी को प्रदूषित किया है, हमने प्रकाश को प्रदूषित किया है, हमने अंतरिक्ष को प्रदूषित किया है, हमने किसी को छोड़ा ही नहीं है। जो जल मेरा जीवन है और जल को दूषण करने का श्रेय किसको जाता है, प्रदूषित करने का श्रेय किसको जाता है? हम ही को जाता है कि हमारे लोभ ने, हमारे लालच ने सारी की सारी प्रकृति को दूषित कर दिया। जल में हमने गंदे नाले छोड़ दिए, सीवेज छोड़ दिए, फैक्ट्रियों के केमिकल छोड़ दिए, आज जल प्रदूषित हो गया है। ऐसी गैसें छोड़ी हैं, वायु प्रदूषित है, यहां तक कि प्रकाश को भी प्रदूषित कर दिया, अंतरिक्ष को भी प्रदूषित कर दिया है। और अंतरिक्ष जो इतना प्रदूषित हुआ, कहते अंतरिक्ष में एक लेयर है जिसको ओजोन परत कहते हैं, और उसमें हॉल हो गया, उसमें छेद हो गया, और छेद से पराबैंगनी किरणें नीचे आ रही हैं, जो प्रकाश हमें जीवन देता था, और वही प्रकाश अब कैंसर की घोर बीमारी पैदा कर रहा है, त्वचा का कैंसर हो रहा है। ये अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण हो रहा है, जो किरणें हमें जीवन देती थी वो किरणें हमें मौत देने लगी हैं। हमने वनस्पतियों को प्रदूषित कर दिया, हमने वृक्षों को प्रदूषित किया है, और प्रदूषित किसने किया? ये मानव ने किया है। जिस प्रकार से शरीर की बीमारी तीन वस्तुओं से होती है, चिकित्सा शास्त्री कहते हैं रोगस्त्र धातु वैषम्यम धातु साम्यता तु आरोग्यता। इस शरीर में तीन धातु होती हैं, बात पित्त और कफ। अगर बात पित्त और कफ समान मात्रा में जितना होना चाहिए उतने हैं तो स्वस्थ है, और अगर उनमें विषमता आ जाए तो यही रोग है, यही बीमारी है। और जिस समय जिस तरह से स्थूल शरीर की ये बीमारियां हैं उसी तरह से सूक्ष्म शरीर की बीमारियां हैं। स्थूल शरीर में बात और पित्त और कफ हैं, इसी तरह से सूक्ष्म शरीर में काम क्रोध और लोभ है। स्थूल शरीर की बीमारियां केवल स्थूल शरीर को बीमार करती हैं, और सूक्ष्म शरीर की जो बीमारियां काम है क्रोध है लोभ है, ये सारे के सारे विश्व को सारे के सारे वातावरण को पीड़ित करती हैं। और जितना भी दूषण आया है इनके पीछे, जितने भी पाप हैं इनके पीछे कहीं काम है, कहीं लोभ है और कहीं क्रोध है। ये सारी प्रकृति को हमारे लोभ ने दूषित किया है। कहीं धन का लोभ है, पैसा आना चाहिए, कैसे भी आए कैसे भी आए, कुछ भी करने के लिए तैयार है, और इसी की देन है। ये जो बीमारी है, ये जो वायरस है, ये घोर संकट जो विश्व के सामने आया है, ये हमारे लोभ की देन है। हमने लोभवश हमने पृथ्वी को दूषित कर दिया, हमने जल को दूषित कर दिया, हमने वायु को दूषित कर दिया है। और देखो इस बीमारी में ये लगभग 3-3.5 मास 4 मास तक सारे के सारे अंदर रहे कि प्रकृति अपने आप शुद्ध होने लगी है। आपको आश्चर्य होगा जो ओजोन होल सारे विश्व की समस्या बना हुआ था इसको कैसे बंद किया जाए, सारे उपाय सारा विज्ञान फेल हो रहा था, और 3-4 वर्ष के लॉकडाउन में 3-4 महीने के लॉकडाउन में ओजोन परत का जो छेद था वो छेद अपने आप पूरा हो गया, बंद हो गया है। जो हमारी नदियां थी, गंगा हो यमुना हो और हो सागर हो, ये सारे के सारे दूषित हो रहे थे, ये 3 महीने के अंतराल में जल शुद्धिकरण हो गया, नदियां शुद्ध हो गई, वायु पॉल्यूशन था वो शुद्ध हो गया, इतना शुद्ध हो गया कि कहते हैं सारणपुर से हिमालय की चोटियां दिखाई देने लगी, जमुनोत्री की जो चोटियां वो स्पष्ट दिखाई देने लगी। ये पॉल्यूशन मुक्त हुआ, वायु पॉल्यूशन मुक्त हुई, जल पॉल्यूशन मुक्त हुआ, पृथ्वी पॉल्यूशन मुक्त हुई। ये सब क्या था, ये पॉल्यूशन बढ़ाया हुआ था। इसका क्या उपाय हो सकता है, ये प्रकृति ने बता दिया कि अगर तुमने जीना है तो हमारी जो संस्कृति है उसकी ओर लौटना पड़ेगा। जो हमारे महापुरुष सदियों से कहते आ रहे हैं, जो हम उपदेश देते आ रहे हैं, आज के आज जो आधुनिक वातावरण ने, आधुनिक संस्कृति ने पुरानी जो मान्यताएं थी उन मान्यताओं को रूढ़िवाद कहकर के किनारे कर दिया, उनको इग्नोर कर दिया, उनकी उपेक्षा की है, उसी उपेक्षा का परिणाम हम भोग रहे हैं। और आज प्रकृति बता रही है, जैसे हम सदियों से कहते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ एक है, जैसे ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है, इस संस्था में विशेष मैंने देखा वहां पर पवित्रता का ध्यान रखा गया कि आप पवित्र कैसे रह सकते, कितनी पवित्रता रख सकते उतनी रखो, अधिक से अधिक। और अब ये रोग कह रहा है, अब आज तुम्हारे वैज्ञानिक कह रहे हैं, तुम्हारे डॉक्टर कह रहे हैं, तुम्हारी साइंस कह रही है कि अगर इस बीमारी से बचना तो कैसे बचोगे, बोले तुम्हारे जूते जो पूरे शहर में घूम के आते हो, हर जगह घूमते, पहले था जूते पूरे शहर में घूमे पहन के घूम रहे हैं और घर के अंदर उन्हीं जूतों में चले गए, बेडरूम में चले गए, किचन में चले गए, शौचालय में भी जा रहे हो, वो जूते कभी उतरते ही नहीं, चप्पल कभी उतरती नहीं है। अब कोविड-19 ने कह दिया अगर आपको जिंदा रहना है तो जूतों को गेट के बाहर उतारो। और इतना ही नहीं, जिन कपड़ों को पहनकर तुम बाहर गए हुए थे उन सारे के सारे कपड़ों को धो या धूप में सुखाओ। अगर कहीं बाहर गए हो, हम कहते थे भोजन करो तो अच्छी तरह से हाथ धो लो, पैर धो लो, मुंह धो लो, उसके बाद कुछ खाना पीना खाओ, ये हमारी मान्यता थी, ये हमने से रूढ़िवाद कह दिया। अब बीमारी कह रही है, अब तुम इतने अलर्ट हो गए हो कि अब हाथ धोने की बात नहीं है, कहीं आपने हाथ भी लगा दिया तो अभी तुरंत अपने सैनिटाइज करते हो, हाथों को सैनिटाइज करते हो, कहीं जाते हो तो हाथ पैर धोने लगे, प्रकृति सिखा रही है। हमारे यहां अभिवादन की भी एक परंपरा थी कि हमारे अभिवादन में स्पर्श नहीं होता था, और होता भी है तो व्यक्ति के महापुरुषों के माता पिता के चरणों में झुकते थे, चरणों का स्पर्श करते थे, उन चरणों के स्पर्श में एक वैज्ञानिकता थी। या गुरुजन आशीर्वाद देते, सर के ऊपर हाथ रखते थे, वो सर के ऊपर हाथ रखने में एक विज्ञान भरा पड़ा, वैज्ञानिकता थी। लेकिन आधुनिक संस्कृति ने इसे रूढ़िवाद कह करके हटा दिया, और या हाथ मिलाना शुरू कर दिया, फिर गले मिलना शुरू कर दिया, और आगे बढ़े तो अब हम अभिवादन भी करते हैं। अब आधुनिक लोगों को देखो, फॉरेनरों को देखो, अब आधुनिक में चुंबन प्रारंभ हो गया है। अब कोविड ने बता दिया, अब तुम हाथ मिलाने से भी भयभीत होने लगे, अब दूर से हाथ जोड़ते हैं, राम राम, दूर से नमस्कार करने लगे। इसे हम सदियों से कह रहे थे, अब तुम्हें हाथ धोना तुमने प्रारंभ कर दिया, दूर से नमस्कार करना तुमने प्रारंभ कर दिया, जूते चप्पलों को बाहर उतारना प्रारंभ कर दिया है, और इस वायरस को नष्ट करने के लिए अब कोई कपूर का धुआं दे रहा है, कोई लोभान का घर में धुआं दे रहा है कि इनसे वायरस नष्ट होंगे। ये हमारी सदियों से परंपरा चली आ रही थी, हमारे हवन की परंपरा थी कि प्रातःकाल उठो और हवन करो, और हवन भी किससे करना था, गौ घृत हो, उसमें औषधियां होती हैं, उनसे हवन करके जो धुआं उड़ता था वह धुआं सारे के सारे वायरसों को नष्ट कर देता था। ये इसमें विज्ञान था, लेकिन हमने इसको इग्नोर कर दिया। अगर कोविड 19 जैसी बीमारी से मुक्त होना है, और एक अकेली बीमारी नहीं है, अब आने वाले भविष्य में न जाने इस प्रकार की कितनी बीमारियां आएंगी, और उनसे कैसे कैसे बचोगे, क्या क्या बचने के उपाय हैं, तो उसके बचने के उपाय यही हैं जो महापुरुष बताते हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं बता रही हैं, जिनकी विश्व की भावना, कल्याण भावना है, वो संस्थाएं बता रही हैं कि जो हमारा अध्यात्म था, जो हमारी प्राचीन संस्कृति थी, इसी संस्कृति में ही इन सब का समाधान छुपा है, इन सब की इनसे सबसे सुरक्षा छुपी हुई है। कि जो हम कहते थे दूसरे का स्पर्श मत करो, नमस्कार करो दूरी से करो, पवित्रता रखो, तन की पवित्रता रखो, मन की पवित्रता रखो, अपना आचार शुद्ध रखो, अपना व्यवहार शुद्ध रखो। देखो जब व्यवहार शुद्ध होता है, आचार क्या है, व्यवहार का नाम ही आचार है, तुम्हारे व्यवहार में शुद्धिकरण होना चाहिए, और तुम्हारे आहार में शुद्धिकरण होना चाहिए, आहार और व्यवहार। अगर तुम्हारा व्यवहार शुद्ध है तो सारे संसार में शांति रहेगी, और तुम्हारा आहार शुद्ध है तो विचार शुद्ध हो जाएगा, और जब विचार शुद्ध होता है तब अशांति का कोई कारण नहीं होता है, वैमनस्यता का कोई कारण नहीं होता है। तो जितना भी जो वर्तमान समय में जो घोर समस्याएं हैं, पूरा विश्व इस बीमारी से जूझ रहा है, इसका कोई उपाय है तो ये महापुरुषों के द्वारा बताया हुआ, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी से के द्वारा बताई हुई जो गाइडलाइन है, वो है कि आप अपने आचार व्यवहार को सुधारो, व्यवहार सुधरेगा, अपना रहन सहन सुधारो। जैसे हम कहते आ रहे हैं कि आप शारीरिक दूरी बना के रखो, विचारों में शुद्धिकरण रखो, हवन करो, यज्ञ में पुराणों में आया है, यज्ञ में ऐसा सामर्थ्य है। ये कोविड 9 एक तो क्या, हजारों ऐसी बीमारियां तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो अगर स्वस्थ रहना है, उज्जवल भविष्य अपना देखना है, तो हमें प्राचीन परंपरा में, आध्यात्मिक परंपरा में, ऋषि मुनियों की परंपरा में आना ही पड़ेगा, इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। और इसी उद्देश्य के साथ में ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं ईश्वरी प्रजापिता ईश्वरी विश्वविद्यालय के बैनर तले इनके प्रयास से हम इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।
तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी का। अब इस सत्र को ज्ञान से रोशन करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं धर्म और कर्म भूमि अयोध्या से जगत गुरु राधा स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज। आप स्वामी हरियाचार्य संस्थान श्री हरिधाम पीठ के प्रमुख हैं। आपसे निवेदन है कि आज के विषय पर प्रकाश डालते हुए अपनी शुभकामनाएं दें।
सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, जो हमारे यहाँ शास्त्र की लाइन है कि सब सुखी हों सब निरोगी हों, तो वो भावना करना और मैं स्वयं संतों से निवेदन करते हुए और स्वयं भी मैं अपनी चेतसिक आत्मा के साथ स्वयं ध्यान और योग करके इस बात के लिए परमात्मा को मनाऊंगा कि आप जल्दी से जल्दी इस महामारी से इन बच्चों को राष्ट्र को बचाने का कार्य करिए, क्योंकि आप ही सर्व समर्थ हैं। आपको छोड़कर दुनिया में तो और कोई समर्थ हो नहीं सकता है जो ऐसी महामारी से जनता को बचाया जा सके। बड़े बड़े राक्षसों से, बड़े बड़े असुरों से, बड़े बड़े प्रलापों से आपने बचाया है, तो इस असुर रूपी महामारी से भी इस राष्ट्र को बचाएं, उसके लिए मैं स्वयं योग ध्यान अपनी चेतसिक आत्मा के साथ पूरी तत्परता के साथ करूंगा और राष्ट्र के सभी संतों को, सभी आश्रमों को, सभी पंथों को, सभी नामधारियों से निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप सब अपनी योग ध्यान पूजा जप तप पाठ, जो भी आपका संबल हो, जो आपके धर्म हो, जो आपकी मान्यता हो, जिसमें आपको विश्वास हो, जिनको आप पूजते हो, उन सब से आप स्मरण करते हुए इस राष्ट्र को बचाने के लिए एक संकल्प लें। ब्रह्मा कुमारी के साथ साथ आप सब संकल्पवान हो कि इस राष्ट्र को हमें बचाना है। कुछ लोग धन से, तन से, मन से कर रहे हैं, हमको अपनी चेतना से, अपने मन से, अपनी आहार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि से, विचार शुद्धि से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके और एक नए भारत, एक राम राज और एक सुखद, एक दिव्य, एक अतुलनीय भारत की परिकल्पना को सार्थक करने के लिए प्रत्येक संत समाज को भी आगे आकर और इस महामारी से बचाव के लिए उपाय करना चाहिए, ऐसा मैं निवेदन आप सबसे करता हूँ। ब्रह्मा कुमारी जाकर मैंने देखा है, वो एक ऐसा तीर्थ का स्थान है, वो सेवा का स्थान है, जहाँ सब सारे एक हैं और सब में ब्रह्म का दर्शन होता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सबके साथ, जैसे हमने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सारा समाज दिव्य हो, मंगल हो और सब में भगवान के उन गुणों का आधान हो जिससे ये राष्ट्र आगे जा सके, निश्चित रूप से ब्रह्मा कुमारी के साथ साथ मैं पूरे संत समाज को एक साथ, जहाँ कोई भेद नहीं, जहाँ कोई भाव नहीं, सब एक साथ परमात्मा के पुत्र हैं, खड़े होकर के एक साथ उपस्थित होकर के इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए तत्पर हूँ, ये मेरी जिज्ञासा और मेरी इच्छा है। मुझे मौका मिलेगा कभी कि कोरोना समाप्त हो, मैं तो स्वयं जाकर ब्रह्मा कुमारी के उन सेवा प्रकल्पों को फिर से देखने का कार्य करूंगा और जो मुझसे सहयोग बन पड़ेगा, तन से, मन से, अपनी चेतना से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने पूजा पाठ ध्यान योग से, संपूर्ण समर्थन के साथ और संपूर्ण चेतना के साथ मैं जागृत होकर के इस कार्य को आगे बढ़ाऊंगा।
आदरणीय जगत गुरु जी का हार्दिक धन्यवाद। क्या आप ये सच्चाई जानते हैं कि जीवन में बहुत कुछ नया प्राप्त करने के लिए आज जो हमारे पास प्राप्तियां हैं उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करना होगा? जब हमारी दृष्टि में कृतज्ञता होती है तब हमारा हृदय संपन्नता और प्रेम से भर जाता है। आपके सामने वीडियो सॉन्ग प्रस्तुत होने जा रहा है जो हमसे यही कह रहा है, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। आइए देखते हैं प्रसिद्ध गायिका अन्वेषा के मधुर स्वर से पिरोए हुए इस सुंदर गीत को।
जीवन की राहों में तुमसे प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा, आंचल में भर के कहलाल मेरा, आंचल में भर के कहलाल मेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा। पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाते हुए दूर गए हमार से, ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान आत्म ज्ञान पाते हुए दूर देह भान से सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा शक्ति से हम तो निडर हो गए पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद प्रीत मेरे तुमसे ही पाई प्रभु प्रीत है तेरी उदारता का अधरों पे गीत है
अब अपने अनुभवों से लाभान्वित करने हमारे साथ जुड़ रहे हैं विद्यमान पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित वाणी मर्मज्ञ आचार्य श्री 1008 श्री जगत गुरु स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज अंतर्राष्ट्रीय श्री राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा से आपसे अनुरोध है कि अपनी प्रज्ञा से हमें लाभान्वित करें।
आत्म को नहीं व्याध व्याध रोग मन मानिए जिनिए तजी उपाद शुद्ध स्वरूप ते जानिए राम राम ओम शांति। अभय अल्लाह दी थे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू के नेतृत्व में न केवल राष्ट्र संपूर्ण विश्व के लिए इस वैश्विक महामारी के विकट संकट काल में राजयोगिनी मुख्य प्रशासिका गुलजार दादी जी के नेतृत्व में तथा अतिरिक्त प्रशासिका रतनमणि दादी जी के इष्टहील छत्र छाया में ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी वरेंद्र साधक साधिकाएं सब साधना रथ है। जैसा कि सुरविदित है वैश्विक कोरोना महामारी के इस संकट के दौर में कौन सा देश अछूता है। भीषण परिणाम सामने आ रहे हैं। कोरोना जैसा अपने आप में सिद्ध कर रहा है, कोई रोड पर ना आए, यानी अपने घर में रहे या साधना करे। पर चिंतन का एक भाव यह भी व्यक्त होता है, कोरोना का एक एक अक्षर, कोरोना का क यह सिद्ध करता है ये कराया गया है, किया गया है और इसके लिए ऑर्डर दिया गया है। आर राइट नहीं है, फिर ओ आया है, ओरिजिनल भी नहीं है, विकृति युक्त है, फिर ना यह नहीं रहेगा, फिर है ए अंत होने वाला है। पर उसके लिए संयम साधना नितांत अनिवार्य है। फिर जैसा कि जानते हैं स्वस्वमति पर अपेक्षित है चिंतन करना, लेकिन हमारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की सबसे बड़ी विशेषता है स्वभाकी होना, संस्कारित होना, संयमशील होना। हजारों भाई बहन संयम की साधना करते हैं, जो हर रोग का इलाज है। योग ही भोग से रोग को समाप्त कर देता है। हम अंतरात्मा के परम विश्वास से कहना चाहते हैं, राष्ट्र का ही नहीं यह विश्व का कोरोना जैसा महारोग संयम और साधना से आज नहीं कल सदा के लिए दूर होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। महान तपस्विनी दादी जी की साधना रंग लाएगी और अनंत साधक साधिकाएं साधना कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राम स्टेज संप्रदाय के इस समय चतुर्मास काल चल रहा, ये भक्ति काल है और भक्ति में वो शक्ति है जो हर प्रकार की विकृति का अंत करने का सामर्थ्य रखती है। प्रकृति विकृति और संस्कृति पर आज पूरा देश चिंतन करने के लिए विवश है। प्रकृति में जीना सीखें, विकृति को उखाड़ फेंकें और संस्कृति की अर्चना करना हमारा आत्मधर्म होना चाहिए। अनेक प्रकार की विकृतियां इस समय में चल रही है देश के अंदर, इन विकृतियों को जड़ामूल से नष्ट कर देना चाहिए। अनुभवियों के अनुभव के आधार पर वेदज्ञ शास्त्रज्ञ और साधना संपन्न महान आत्माओं की सनदी में ही अनेक प्रकार की समस्या का समाधान हो जाता है। हमारा भारत राष्ट्र संपूर्ण विश्व के मानस पटल पर गतगुरु के पद से प्रतीत होने का कारण है। भारत राष्ट्र ने सनातन काल से ऋषि महर्षियों की आज्ञा को स्वीकार किया है। एक अल्प सा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा और याद दिलाना चाहूंगा। एक महान नामानुरागी परम तपस्वी महापुरुष की सदनिधि में कई सेवारत थे, साधनरत थे। अनंत समय बीतने पर एक दिन एक सेवक ने अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मेरी बहन की शादी है और मैं घर जाना चाहता हूं। साथ ही अनुरोध किया कि आप भी कृपा करके पधारेंगे तो बहुत अच्छा होगा। गुरुदेव ने फरमाया समय जैसा होगा देखेंगे। बीच बीच में कई बार आग्रह किया और सेवक ने संकेत भी किया कि बहन की शादी है और व्यवस्था कुछ है नहीं। एक दिन बाकी बचा और सेवक ने कहा गुरुदेव कल मुझे इजाजत मिली जाने की। गुरुदेव मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं। ठीक है, दूसरे दिन जब जाने लगे तो उन्होंने बहुत सारे अनार के दाने अपने सेवक को दे दिए और कहा तुम्हारी बहन की शादी ऐतिहासिक हो, ऐतिहासिक होगी, लोग कहेंगे क्या शादी हुई है, मेरी मंगल कामना। साथ में दो सेवक और भेज दिए कि विवाह करा करके सानंद और वापस लौट किया ना मुझे बताना। जब चले गुरुदेव को प्रणाम करके चरणों में नतमस्तक होकर रास्ते में उन दो सेवकों से उन्होंने कहा, गुरुदेव को पता है कि बहन की शादी है, व्यवस्था कुछ नहीं है, फिर भी गुरुदेव ने मेरी कोई मदद नहीं की। सेवकों ने कहा, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया कि ऐसी शादी होगी जो लोग कहेंगे क्या शादी हुई है, इससे बढ़कर के और क्या मिल सकता था, ये कोई कम पड़ रहा है। खैर, चलते चलते रास्ते में जैसा ही एक राजमार्ग पार कर रहे थे और अचानक राजनगरी में एक ऐलान हुआ, राजकन्या बीमार है। और राजवैद्य ने कहा, किसी के पास अनार हो तो दे दें। उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा, पुरस्कार दिया जाएगा। संयोग से सेवकों ने समाचार दे दिए, इनके हमारे पास अनार के दाने बहुत सारे हैं। राजवैद्य के पास पूछा है, उसका जूस निकाल के दिया गया और कन्या स्वस्थ हो गई। राजा ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, क्या बात है। उन्होंने अपनी सारी हकीकत बता दी। राजा ने कहा, उस सेवक से, गुरुदेव के चरणों में अनुराग रहने वाला से, तुम्हारी बहन की शादी मैं कराऊंगा, वो मेरी बेटी है, और ऐतिहासिक शादी करवाई, खूब सोना चांदी लुटाया, उनके परिवार को बुला करके और उसके माँ बाप को भी खूब दिया, और कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसी ऐतिहासिक शादी हुई। शेष सेवा सब कुछ कार्य करके सेवकों के साथ पूरा गुरुदेव के चरणों में लौटा, और हकीकत करते करते उसकी आंखें भर आई। उसे पता चला भारतीय संस्कृति के ऋषि वर्षों की साधना की ताकत कैसी होती है। गुरुदेव प्रत्यक्ष में ये कुछ नहीं देते, पर अप्रत्यक्ष में सब कुछ प्रदान कर देते हैं। ठीक कहा है अंतर्राष्ट्रीय रामश्रेष्ठ संप्रदाय के जन्मदाता ने, कहां वर्णों विस्तार कर सदगुरु गुणान पार, रामचंदे रामधन अनंत किया उपकार। यही कारण है कि हम विकट संकट काल में भगवत शरण, गुरु शरण, संत शरण और साधकों की शरण में जाकर के आत्म शांति की अनुभूति करते हैं। यह सबसे बड़ी विशेषता है। चातुर्मास की भक्ति काल में यत तत सर्वत्र राम नाम की साधना से राष्ट्र संकट दूर हो, हमारा राष्ट्र और विश्व कोरोना मुक्त हो, ऐसी हम अंतरात्मा से अपील करते हैं। साथ ही हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की राजयोगिनी दादी गुलजार दादी का अद्भुत तपा काल, अद्भुत साधना, बहुत बड़ी दिव्य साधना इस समय चल रही है, पूरा विश्व सुखी हो, इस हेतु से हम उन्हें साधुवाद अभिव्यक्त करते हैं। तमाम ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मकारियों के प्रति अपनी आत्मीयता व्यक्त करते हैं। सभी के प्रति मंगल कामना। राम राम, ओम शांति, ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भीलवाड़ा चातुर्मास प्रवास काल की इस पावन धरा से सबके प्रति मंगल कामना।
हृदय से बहुत बहुत आभार स्वामी जी का। अब हमें बेहद खुशी है कि बिहार से हमारे साथ जुड़ रही हैं जैन साध्वी आचार्य श्री चंदना जी। आप प्रथम जैन साध्वी हैं जिन्हें आचार्य की पदवी से विभूषित किया गया है। 14 वर्ष की आयु में आपकी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हुई, जब आपने दीक्षा लेकर अपना जीवन प्रभु अर्पित कर दिया। योर विजन फॉर द वर्ल्ड इज सिंपल, ऑल यू नीड इज लव टू यूनाइट ह्यूमैनिटी। आइए सुनते हैं मानव प्रेम और करुणा के भावों से भरपूर आचार्य जी का आज के विषय पर प्रेरणा युक्त वक्तव्य।
साधु संतों की एक ऐसी दिव्य परंपरा जो हजारों वर्षों से चल रही है, उन्होंने निश्चित रूप से उस अध्यात्म की बात की है उसमें विषय है आत्मा परमात्मा और संसार से विरक्त होकर के आध्यात्मिक जीवन जीने की प्रेरणा उसे जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है। पर इसके बाद में भी बहुत आश्चर्य की बात है कि जिन्होंने अपने माता पिता का परित्याग किया, परिवार का परित्याग किया, संसार के तमाम साधनों और उपकरणों का परित्याग किया, ऐसे व्यक्ति संसार उस मानव जाति की पशु जगत की अगर कोई पीड़ा देखी है, उनका अगर कोई कष्ट देखा है, उनकी कोई परेशानियां देखी है, तो वह उनकी करुणा का स्रोत उस तरफ में भी बहा है, एक तरफ परमात्मा की तरफ और एक सर्व सामान्य मनुष्य या पशु उनकी पीड़ा को देख करके उनकी करुणा का प्रवाह उस तरफ में भी बहा है। और मैं कहूंगी कि धर्म का अर्थ एक तरह से करुणा का विस्तार है, प्रेम का विस्तार है। अगर वह परमात्मा से प्रेम कर सकता है जो नहीं दिखाई देता, उससे प्रेम कर सकता है तो जो विश्व आसपास की दुनिया में फैला हुआ है उसकी अगर कोई पीड़ा है, उसको अगर कोई कष्ट है, तो उसे वह मौन कैसे रह सकता है, चुप कैसे रह सकता है। महावीर ने भी अपने जीवन काल में एक ऐसा ही किसी व्यक्ति के प्रश्न के जवाब में कहा, पूछा किसी ने, बंदे एक व्यक्ति आपकी सेवा करता है, आपकी भक्ति करता है, आपकी पूजा करता है, और एक व्यक्ति किसी रुग्ण व्यक्ति की परिचर्या करता है, इन दोनों में आप किसको धन्यवाद दोगे, किसको धन्यवाद दोगे, उस पीड़ित व्यक्ति की सेवा करने वालों को या आपकी भक्ति करने वालों को। और सेवा के साथ साथ एक महत्वपूर्ण विषय है कि जहां हम प्रार्थना के द्वारा भी जो लोग कुछ ऐसे समर्थ व्यक्ति हैं जो दूसरों को भोजन कराना चाहते हैं, दूसरों को भोजन कराने के साथ साथ स्वयं भोजन को छोड़ सकते हैं, भोजन छोड़ने का इतना बड़ा साहस, जैन परंपरा में एक ऐसी तप की धारा है निरातन में। साथी श्री रोहिणी जी, आज 20वां उपवास है, 20 दिन से केवल 2 बार गर्म पानी के सिवा और भी कुछ नहीं लेते हैं और भोजन नहीं या कोई भी वस्तु इसको स्वीकार नहीं करते, और उनका उस तप के पीछे, उस तप की आराधना के पीछे यही उद्देश्य है कि आत्मकल्याण तो है ही, आत्मनियंत्रण तो है ही, उसके साथ साथ में उनकी प्रार्थना है, उनकी तरफ से एक संकल्प है कि दुनिया जिस एक कहना चाहिए कि अनपेक्षित ऐसी आपत्ति से मानव जाति जल्दी से जल्दी मुक्त हो और मनुष्य फिर से अपना स्वस्थ जीवन, आनंदपूर्ण जीवन जिए और परस्पर में एक दूसरे के साथ सहयोगी बनकर के जिए। संघर्ष हिंसा ये मानव जाति के लिए खतरनाक है, इसकी अपेक्षा से हम प्रेम के विस्तार से सारी दुनिया के प्रश्नों का, इसमें एक ही बात कहती हूँ, प्रेम के शास्त्र से दुनिया को बसाया जा सकता है और ये धर्म का उपदेश है। हिंसा के शस्त्र से दुनिया के विनाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं। अगर हम आबाद होना चाहते हैं, हम बर्बादी से बचना चाहते हैं, तो हमें तप की आराधना धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझने का महत्वपूर्ण अवसर अभी है और वह जीवन में उतार करके हम अपने जीवन को सुखी बनाएं। बस यही कामना मेरी आप सब लोगों के लिए है। तीर्थंकर महावीर ने उस समय कहा है, जी किराणम परियरई से धन्य, जो ज्ञान व्यक्ति की सेवा करता है, ज्ञान व्यक्ति की परिचर्या करता है, वह धन्य है, वह धन्य है। इस तरह से उनके उपदेश के आधार पर ही आज पिछले 50 वर्ष से निरंतर भी अनेक क्षेत्रों में उन्होंने सेवा के क्षेत्र से, एजुकेशन की दृष्टि से और आपातकाल में जब भी कभी मनुष्य पीड़ित हुआ है, परेशान हुआ, उस परिस्थिति में भी जाकर के उन्होंने काम किया है। निरातन के लोगों ने काम किया है, हजारों लोगों की नेत्र चिकित्सा के लिए। जब देखा कि आसपास के देहातों में जो लोग वृद्ध हैं, उपेक्षित हैं, उनकी तरफ स्वाभाविक रूप से परिवार और गरीब होने के कारण उनकी परिचर्या नहीं कर पाते, उन लोगों को ध्यान में रख करके हजारों लोगों की चिकित्सा के लिए नेत्र ज्योति सेवा मंदिर के नाम से आज लाखों लोगों के ऑपरेशन, लाखों लोगों की चिकित्सा यहाँ पे हुई है। इसी तरह से जब जब कभी जैसे कच्छ में अर्थक्वेक के समय हजारों लोग परेशान थे, कोई साधु संतों का मन, किसी धर्मगुरु का मन उनकी पीड़ा को सुन करके वो कहाँ परमात्मा को याद करेगा। वो परमात्मा का ही संदेश है कि वहां पे जाकर के उनकी सेवा करो, वहां मेरी सेवा है। तो विराजन के लोगों ने उन लोगों के बीच में जाकर के उन लोगों का संगोपन किया, उनका ध्यान रखा, हजारों बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया। जरूरत थी क्योंकि स्कूल बंद हो चुके थे, ऐसे समय में बच्चे जो इधर उधर बिखर रहे थे उन बच्चों को संभाल करके, उनकी सुरक्षा करके, उनके योग्य वातावरण दे करके उनकी शिक्षा की व्यवस्था उन्होंने की है। तो एक तरह से नेपाल में भी अर्थक्वेक, सुपौल और सहरसा में जिस समय में बाढ़ आई उस समय, साउथ में जब तकलीफ हुई लोगों में, गुजरात में जब परेशानियां हुई तब, तो एक तरह से विराजन के साथी संत ने अलग अलग जगह जाकर के अपनी सेवा का विस्तार किया है। सेवा को एक तरह से लोगों तक पहुंचा करके लोगों के जीवन में एक परिवर्तन लाने की कोशिश की है। मैं यही कहूंगी कि धर्म जो है वो निष्क्रिय होकर के बैठने का नहीं है, लेकिन निष्काम भाव से, करुणा के भाव से, मित्रता के भाव से और कोई अपेक्षा के बिना, कोई धर्म परिवर्तन की अपेक्षा के बिना, एक मात्र एक आत्मीयता से एक परमात्मा की भक्ति का विस्तार वह सेवा है। इस भाव से अगर सेवा की जाए तो मैं सोचती हूँ वह सेवा सेवा नहीं वह भक्ति बन जाती है। और साधु संतों का जो दायित्व है, अगर परमात्मा की भक्ति, तो किसी पीड़ित व्यक्ति की परिचर्या भी उस भक्ति से कम नहीं है, उस भक्ति का भी उतना ही बड़ा महत्व है। तो मैं कहूंगी कि धर्म है अधूरा है बिना सेवा का, धर्म अधूरा है बिना लोगों की आत्मीयता से कष्ट में पड़े हुए लोगों के सहयोगी बने बिना। आज कोरोना का से पीड़ित है सारा संसार, और इस समय कैसे कोई व्यक्ति चुप बैठ सकता है, कैसे कोई व्यक्ति उन लोगों की बिना मदद के रह सकता है। यद्यपि परिस्थितियां भिन्न है, माताओं भिन्न है, अपने स्वयं खुद जाकर के उन लोगों के बीच में जाने के लिए वो लॉकडाउन के कारण, डिस्टेंसिंग के कारण बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस है, पर उन रिस्ट्रिक्शंस को होते हुए भी अगर थोड़ी बहुत सेवा अगर हम उन लोगों के लिए जो भोजन के बिना, साधनों के बिना जीवन में उन लोगों को, कि जिन लोगों को जरूरत है, उन जरूरतमंद लोगों के लिए एक छोटी मोटी भी अगर हम सहायता कर सके तो इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं हो सकता। और इस समय अगर साधु साधवी नहीं करेंगे, अगर ये संत परंपरा के लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये आदर्श है, अगर हम करेंगे, साधु संत करेंगे, इस दायित्व के साथ में करेंगे तो लोगों में भी प्रेरणा मिलेगी, लोग भी काम के लिए उत्सुक होंगे। और सेवा और भक्ति ये सब का सब एक ही रूप है, ये लोगों के मन में एक अच्छा विश्वास हम पैदा करा सकेंगे। इस विश्वास को पैदा करने का इससे सुंदर अवसर और कोई नहीं हो सकता। तो मेरी दृष्टि से यह एक आपके द्वारा जो एक साधु संतों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके सबके द्वारा इस विचारों के विषय में जो आम जनता तक इस बात को पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है, मैं ब्रह्म कुमारी के आपके इस आपने जो ये आयोजन किया है इसको मैं अंतकरण पूर्वक धन्यवाद देती हूँ और आपका यह प्रयास यशस्वी हो इसे मैं प्रार्थना।
आदरणीय साध्वी जी का अंतर्मन से धन्यवाद। वर्तमान परिस्थितियों को बदलने में जिम्मेदारी लेने की और परिवर्तन की शक्ति राजयोग मेडिटेशन से प्राप्त होगी। मानव वास्तव में एक शक्ति का पुंज है। अपनी अंतर्निहित शक्तियों को पहचान कर उसको कार्य में लगाने से जरूर सफलता मिलती है। राजयोग मेडिटेशन की अनुभूति कराने हमारे साथ हैं भारत की राजधानी दिल्ली में ईस्ट पटेल नगर स्थित ब्रह्मा कुमारी सेंटर की संचालिका बी के राजेश्वरी बहन। आइए अब करते हैं राजयोग मेडिटेशन की अनुभूति।
ओम शांति। आज हम एक बहुत सुंदर विषय के ऊपर बातचीत करेंगे। आज का बहुत सुंदर विषय है भीतर की यात्रा, अंतर जगत की यात्रा, जिसका नाम है राजयोग। यह योग सर्वश्रेष्ठ योग कहा जाता है। इस योग को सर्वश्रेष्ठ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस योग में स्वयं की पहचान, परमात्मा पिता की पहचान मिलती है। इस योग में हम स्वयं उस पिता परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हैं। पिता परमात्मा के साथ हमारा संबंध जोड़ता है, इसीलिए इसको योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़, संबंध, मिलन, कनेक्टिविटी। तो वास्तव में आत्मा का पिता परमात्मा के साथ सर्वश्रेष्ठ मिलन, इसको राजयोग कहते हैं। राजयोग के माध्यम से अनेक प्रकार के फायदे हम अपने जीवन के अंदर महसूस करते हैं, क्योंकि राजयोग से सात्विक और सकारात्मक विचारों के आधार से हम अपने जीवन को, स्वयं को, अपने परिवार को ऊर्जावान, शक्तिवान बनाते हैं। तो चलिए एक भीतर की यात्रा की ओर एक सुंदर राजयोग का अभ्यास करेंगे, जिस राजयोग के अभ्यास में हम आपको विचार देते जाएंगे और साथ साथ इस विचार को आप अपने अंदर अनुभव करते जाएंगे, फील करते जाएंगे, विजुअलाइज करते जाएंगे, क्योंकि अपने जीवन की सुखद यात्रा है। तो चलिए अपने मन को अनेक प्रकार के विचारों से दूर करते हुए अपने मन को एकाग्र करें, अपने मन की सारी शक्तियों को भ्रुकुटी के मध्य एकाग्र करें। स्वयं को एक श्रेष्ठ संकल्प दे कि मैं एक ज्योति बिंदु शक्तिशाली चमकती हुई आत्मा हूं। मैं आत्मा शक्तिशाली हूं। मैं आत्मा शुद्ध हूं। मैं पवित्र हूं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। मुझ आत्मा से निकलती हुई शांति की तरंगे, शांति के वाइब्रेशन मेरे मन को, मेरे शरीर को, मेरे ब्रेन के सेल्स को एकदम शांत कर रहा है। मैं शांत स्वरूप हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, मुझ आत्मा के पवित्रता की किरणें, पवित्रता के वाइब्रेशंस मुझे स्वस्थ बना रहे हैं। मेरा मन, मेरा शरीर दोनों ही स्वस्थ होता जा रहा है। स्वयं को इसी स्वमान में, इसी श्रेष्ठ विचारों में स्थित करें कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। चलिए धीरे धीरे उस परम पिता परमात्मा के सानिध्य में, वो परम पिता परमात्मा जो मुझ आत्मा की तरह अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु प्रकाश पुंज दिव्य सितारा है, वो पिता परमात्मा के सानिध्य में मैं आत्मा सुरक्षित हूं, मैं सफल हूं, प्रोटेक्टेड हूं। उस परमात्मा पिता की छत्र छाया में मैं आत्मा निश्चिंत हूं। मैंने अपने सारे बोझ, चिंताएं, तनाव उस परमात्मा पिता को सौंप दिया। मैं उस पिता परमात्मा के सानिध्य में एकदम निश्चिंत हूं। परमात्मा पिता की आशीर्वाद से मेरे सारे रिश्ते प्रेम पूर्ण है, संबंधों में यूनाइटेड है, संबंधों में प्यार है, संबंधों में खुशी है। परमात्मा पिता की वाइब्रेशन से, परमात्मा पिता के सानिध्य से मुझे ये निश्चय है सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरे कैरियर में, मेरी पढ़ाई में निश्चय ही मुझे सफलता मिल रही है। विजुलाइज करते रहे मेरा कैरियर पहले से और ज्यादा, मेरी सैलरी पहले से और ज्यादा बढ़ती जा रही है और मैं खुशी का अनुभव कर रहा हूं। परमात्मा पिता मेरे साथ है, उसके सानिध्य से मुझे निश्चय है। इस महामारी ने जो आज हम सब को घेर कर रखा है, धीरे धीरे परमात्मा पिता के सानिध्य से तीव्र गति से ये बीमारी हमारे बीच से जा रही है। मैं, मेरा परिवार, मेरा देश और समग्र विश्व फिर से सुख शांतिमय जीवन का अनुभव करते जा रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।
विशेष धन्यवाद पीके राजेश्वरी बहन का। स्नेहपूर्वक अंतःकरण सहित आभार व्यक्त करते हैं आप सभी धर्म प्रेमियों का, प्रभु प्रेमियों का आज के इस खुले सत्र में हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह 10 बजे फिर मिलेंगे दूसरे खुले सत्र में, जिसका विषय रहेगा आत्मनिर्भर के लिए आत्मिक बल। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। ओम शांति।
शुभ संकल्पों के दीप जलाएं।